इस वक्त इस सत्संग में जो जमा हुए वो परमसम परम पूज बाबूजी महाराज उर्फ डॉक्टर श्यामलाल सक्सेना गाजियाबाद की जन्म शताब्दी पे इस सत्संग का आयोजन किया। आप का असली नाम डॉक्टर श्यामलाल सक्सेना था। आपको सब लोग प्यार में बाबूजी कहा करते थे, इसलिए आपका नाम बाबूजी महाराज पड़ गया। आपका जन्म एक छोटे से गांव में कटिया संपन्न परिवार था, वहां 1 जनवरी 1901 में हुआ। आपके माता पिता प्रभु के बड़े प्रेमी थे और आप में प्रभु की तरफ पैदाइशी रुझान था। देखो, हम लोग संत मत के फॉलोवर, संत मत में एक सदगुरु होता है, उसी का सत्संग और उसी का सत का नाम दिया हुआ। तो संत मत में एक सदगुरु की भी सिर्फ महिमा होती है। संत मत साधना जो होती है ये आत्मा के ज्ञान का अनुभव का तरीका है। सब लोगों ने ये देखते हुए कि कलयुग का टाइम है, लोग जो हैं परमात्मा को आसानी से कैसे पा सकते हैं, एक तो कर्म योग से, एक ज्ञान योग से, एक भक्ति योग से। तो संत मत साधना में, हर साधना में ये तीन हिस्से होते हैं। किसी में कर्म डोमिनेट करता है उसको कर्मयोग कहते हैं, किसी में ज्ञान डोमिनेट करता है कि ज्ञान के जरिए पाया है उसको ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग जो है ये प्रेम का रास्ता है। तो जिस वक्त संतों ने ये देखा कि कलयुग का टाइम है, दूसरी इतना टाइम किसी को नहीं है कि परमात्मा के लिए जंगलों में जाए तपस्या करे, तो उन्होंने एक सरल रास्ता बनाया। ये संतों की कृपा है, उस पर विशेष उल्लेखनीय परम संत परम पूज महात्मा रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़, बहुत संत हुए, सब एक से एक अच्छे हैं। लेकिन इस संत मत की आधार परम संत परम पूज लाला जी महाराज साहब फतेहगढ़ हुए। उनके आजकल उन्होंने इसको बड़ी सरल भाषा में कि संत मत में तुम ग्रस्त जीवन में रहते हुए प्रभु के पास, प्रभु को किस तरह से पा सकते हो, तुम्हें न गृहस्थी छोड़ना है, न जंगल में जाना है, न कहीं ऐसी ज्यादा मशक्कत करनी है कि जो तुम गृहस्थी में रह के न कर सको। इसीलिए इसको उनकी भाषा में सहयोग भी कहा। और आपके जितने शिष्य हुए और उनसे जितने लोग कनेक्टेड हैं, आज अकेले हिंदुस्तान में फॉरेन में लाखों आदमी इस संत मत साधना से फायदा उठा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी हो कहीं भी हो उसमें अगर कोई भूल चूक हो जाए, वैसे उल्लेखनीय चाचा जी महाराज साहब थे, परम संत बाबू ब्रजमोहन लाल जी साहब थे, परम संत डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी, पोस्ट मास्टर साहब श्याम बिहारी लाल जी, उधर एमपी में डॉक्टर किशन स्वरूप साय जी, ठाकुर साहब, प्रभु दयाल जी, यानी परम संत महात्मा चतुर्भुज साय साहब, किसी का नाम रह गया हो तो स्लिप हो जाएगी, ये दूसरी चीजें। लेकिन ये सब ऐसे उनके नवरत्न और हीरे थे जिन्होंने संत मत साधना की तरह सारी दुनिया में इस विद्या को फैला दिया। देखो तो उससे पहले जितने ऋषि और संत गुजरे वो चूज और पिक करते थे कि अधिकारी कैसा है, और इस विद्या को छुपा के रखते थे। लेकिन परम पूज लाला जी महाराज साहब के गुरुदेव ने श्री बड़े उदार चित्त परम संत मौलवी फजल अहमद खान साहब बड़ी उदार चित्त दिखाई, और इसको आपने लाला जी महाराज साहब को ये विद्या दी और फरमाया कि देखो ये विद्या हिंदुओं की उनके ऋषि मुनियों की संतों की थी, और इसको तुम्हारे जरिए उन्हीं में वापस भेज दो। तो ये 1896 का वाक्य है। कितनी उदार चित थी, कैसा माहौल था। तो परम पूज बाबाजी महाराज साहब फरमाया करते थे कि जिस तरह से उन्होंने उदार चित से विद्या ट्रांसफर की, इसी तरह से लाला जी महाराज साहब ने भी भूल के भटके सबको इस रास्ते पे डालने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा चाचा जी महाराज साहब जो उनके अनुज थे, उन्होंने उनके इस काम में बहुत मदद की। सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो देखो इसमें भी सिर्फ अंश होता है, संत कितना है लिमिटेड एरिया का होता है। संत के 1,000, 2,000, 10,000, 1,000 इससे ज्यादा आदमी नहीं होते। अवतार पूरी परमात्मा की ताकत लेके आता है और वो इसको यूनिवर्सल फैलाता है। संत का एरिया लिमिटेड होता है। तो जिसके पास जिसका अंश होता है और प्रभु की दया होती है, उसी को उसके पास भेज देता है। देखिए परम पूज बाबाजी महाराज साहब 1901 में 1 जनवरी को जिला बदायूं में पैदा हुए। उस टाइम में इतनी सवारी वगैरह की भी वो नहीं थी सहूलियत। परमात्मा इन लोगों को कहते हैं कि जिन पर परमात्मा की पैदाइश ही दया होती है। आप 14 बरस के थे, आपने मिडिल पास किया और आपको सीधे प्रभु ने परम पूज लाला जी महाराज साहब के चरणों में भेज दिया। 14 बरस की उम्र थी, 15 के रहे होंगे। तो आप पढ़ने के लिए फतेहगढ़ आए, मिशन स्कूल में भर्ती हुए। वो कह रहे थे कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, एक दिन हिस्ट्री के प्रोफेसर जो थे वो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, राजा जनक का जिक्र आया। तो उन्होंने कहा राजा जनक विधेय थे, यानी देहधारी होके भी प्रभु को उनको प्रभु का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। तो बाजी आर्य समाजी काल के थे, तो आपके एक कुलीग थे पंडित माता चरण जी, उन्होंने कहा हम समझा दें। तो उन्हें समझाया कि देखो देहधारी है और ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और फिर परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, इसी को विदेह कहते हैं। बाज इनका आजकल कलयुग का टाइम है, ऐसा तो कोई नहीं। तो आपने फरमाया कि नहीं, हम ज्यादा तो नहीं जानते, एक बुजुर्ग बार है, उनका ग्रस्त जीवन है और उनको इस चीज का ज्ञान है। तो देखिए, ये कहने का सिर्फ ये मतलब था कि उस वक्त ऐसी तड़प पैदा हुई कि आप उनको लेके फौरन कहा कि अभी दिखाओ। तो उस दिन कुछ डीएम साहब के यहां कोई फंक्शन था, उसमें लाला जी महाराज साहब तशरीफ ले गए थे, तो दूर से दिखाया। बताते थे कि रात भर हमको नींद नहीं आई, और दूसरे दिन सीधे उनके खिदमत में हाजिर हुए, और जो पहली निगाह से देखा तो देखते ही रह गए। जब 10-15-20 मिनट गुजरे तो आपने पूछा क्या पूजा सीखने आए हो, उन्होंने कहा कि अगर आपकी कृपा हो जाए। तो फरमाया करते थे कि उन वर्ड्स में इतना प्रेम था, उसी दिन से हम उनके हो गए। तो 14-15 वर्ष की उम्र, उस वक्त फरमाया कि 4-5 लोग थे, हम थे, पंडित माता चरण जी थे, पंडित प्यारेलाल जी थे, एक आध साहब और होंगे। और 1915 से आपने आपकी सोबत उठाना शुरू की। परम पूज लाला जी महाराज साहब का विशाल 1931 में हुआ, तो आपकी खिदमत में 16 साल रहे। देखो जहां ये सहज मार्ग है, जहां ये सरल है, कब, जब आप उसके हो जाए। ये प्रेम का रास्ता है, ये सीना बसीना ट्रांसफर होता है। संत मत में गुरु जो है शिष्य को इस विद्या का इल्म नॉलेज कैसे कराता है, उसके हृदय में ट्रांसफर कर देता है अपने ज्ञान को उसके हृदय में। ये जो है इल्म सीना है, सफीना नहीं, किताबों में नहीं, जो लोग वाचक है उसको ज्ञान नहीं। फरमाया करती थी कि जिसको घट की घट मार्ग की विद्या नहीं है, जिसको चक्र का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं पा सकता। वाचक हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अंतःकरण का ज्ञान नहीं है तो आत्मा का ज्ञान नहीं होता। और अपने यह संत मत में इसीलिए आंतरिक सत्संग कराते हैं। असली चीज क्या है कि अपने हृदय को साफ करो और उसमें प्रभु का प्रेम भर लो, और उसी प्रेम को प्रभु के चरण में अर्पण कर दो। कितना सरल मालूम होता है, जीवन कट जाता है, लेकिन इस विद्या का अंश भी नहीं आता। देखिए आपके गुरुदेव लाला जी महाराज साहब की कितने पहुंचे हुए सदगुरु संत थे, आपने भी 10-15 साल सोबत उठाई, तब जाके इस काबिल हुए। तो कैसे लोग कहते हैं कि सरल है, सरल क्यों है कि गुरु अपने हिस्से में से इस विद्या को देता है, इसी को अपने यहां तवज्जह कहते हैं। आप आए दुनिया के ख्यालों से भर के आए, हृदय में दुनिया है, अब वो भला बताओ प्रभु का प्रेम कहां भरे। तो पहले वो हृदय की सफाई करता है, फिर मौका देखता है कि अब आपका रिझान इधर की तरफ हुआ प्रभु की तरफ, और उसने फौरन प्रभु का प्रेम आपके हृदय में भर दिया। ये सीना बसीना तालीम है, इसका ज्ञान अनुभव वही कर सकता है जिस पे ये हालतें गुजरी, उससे पहले नहीं। वाचक हो सकते हो, बड़ा अच्छा भाषण दे सकते हो, लेकिन उसका असर नहीं हो सकता। देखो 15 बरस की उम्र में गई, उसी के घर के हो गए, जो वो चाहते थे वो आप करते थे। ये इसको सूफी संत कहते हैं फनाइयत हासिल करना, जिस्म दो हो गए जान नहीं रहे, जिस्म अलग अलग है ख्यालात एक हो गए। आप फरमाते थे कि जब 1924 या 25 की बात है, परम पूज लालज महाराज साहब को भोगांव शरीफ जाना था, उर्स था, तो आपने डॉक्टरी पास की हुई थी, 2-3 साल हुए थे, तो आपने खत लिखा कि अगर आपको दिक्कत न हो तो हम उसमें शिरकत चाहते। तो लाल जी के घर से ये लोग जिद जी कहा करते थे, तो उन्होंने कहा ये तो भी 22-23 बरस के हैं, वहां इतने विद्वान लोग आएंगे, इनका वहां क्या काम। तो जिद जी ने कहा कि नहीं, जब आप जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है। तो जिस वक्त उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि आ जाओ, तो आप उर्स में गए थे, तो उसमें कहा था उसमें आपने अवतार समझाई और इतना अच्छा समझाए कि लोगों ने कहा अगर इस तरह से कोई समझाए तो ये लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाए। उसी दरमियान में किसी बबरची के पैर जल गया या हाथ जल गया, तो आप डॉक्टर तो थी, फौरन दवा लगाई। तो सब लोगों ने कहा कि नया डॉक्टर आया लड़का, उसने ऐसी दवा दी कि उसका दर्द खत्म हो गया। तो आपको आपके गुरुदेव इतने खुश हुए और कह रहे थे इतनी मीठी मुस्कान से देखी वो छप अब तक हमारे दिमाग में ऐसी बस गई कि जीवन भर के लिए होगी। देखो इस इंतहा का प्रेम होना चाहिए, ये रास्ता प्रेम का है। इसमें कोई ये नहीं कहता तुम गृहस्थी छोड़ो, लेकिन ये है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की ड्यूटी भी करो, उसको साथ रखो। शगल क्या रहता है, हर वक्त ये ख्याल करो कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। जमीन पे जब सो के उठते हैं पैरा पैल पड़े तो प्रणाम करो कि जिससे आदत पड़ जाए। खाना खाएं, दुनिया का कोई भी काम करें, मरीज देखें, क्या है एक सेकंड का होता है उनका कि हम नहीं वो देख रहे। तो हर वक्त इस तरह से, इस संगत से, इस सोबत से, तब जाके फनाइयत हासिल होती है। फनाइयत 1-2 दिन में नहीं हासिल होती, न 1-2 सिटिंग में कोई कर सकता। अगर इतने ही आसान होता और इतने ही सरल होता तो ये एक दूसरे के साथ 15-15, 20-20 साल क्यों कसरत करते। सरल क्या है, प्रेम है, उस प्रेम के बस में दे देते। अगर कमी भी है तब भी इसलिए कि उनका ये लड़का प्रेमी है, जाएगा नहीं, इसीलिए अपने यहां दीक्षा पे बहुत जोर देते हैं। देखो जब तक तुम्हारा अटैचमेंट पूरा नहीं होगा तुम कहीं भी जा सकते हो, तो अपने यहां कभी भी ये फोर्स नहीं करते तुम्हें जल्दी कर दें, तुम हमको परख लो हम तुमको परख लो। जब तक ये आज्ञा चक्र क्रॉस नहीं करा लेते तब तक इसको सोचते भी नहीं, क्यों कि ये स्थूल है। आत्मा की धार इस पे पहले आके आज्ञा चक्र ये होता है, यहां रुकती है। जब तुम्हारा ये सद गया अब तुम दोनों एक हो जाओगे, अब न तुम छोड़ दोगे न वो छोड़ेगा, क्योंकि ये माया जो है स्थूल रूप से सूक्ष्म में इसके आगे हो गई। और देखिए हर वक्त ये आदमी सोचता रहता है कि हम किस तरह अपनी गुरु की नजदीकी और उनका प्रेम प्राप्त करें। जब तक तुम तो प्रेम कर रहे हो किसी तरह से गुरु को तुमसे प्रेम हो जाए। तो परम पूज्य बाजी महाराज साहब ने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया कि हम कुछ ऐसा रहे कि जिससे उनके नजदीक हो जाए, उनको हमारी याद आने लगे। और कभी भी देखिए 1983 था, आप बहुत बीमार थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो जब तक तुम्हें अपने गुरु में पूरी लय अवस्था प्राप्त नहीं है, जब तक तब तक भरोसा भी नहीं आता। आंतरिक सत्संग में क्या होता है, गुरु अपनी विल पावर से शिष्य की आत्मा की धार को ऊपर के मंडलों में ले जाता है और उसको रास्ता दिखा देता है कि देखो ये धाम है, इस जगह तुम्हें पहुंचना है, जब तक ये तुम्हारी नहीं है, उसकी कमाई का हिस्सा है और इसको पोशीदा रखता है कि ऐसा ना हो कि तुम सिद्धि के चक्कर में पड़ जाओ। अब जब अपनी मेहनत करोगे और अपना अंतःकरण साफ करोगे, उससे दूर रह के तब इस विद्या का ज्ञान होता है, तब ये समझ में आता है कि ये तो हमारे इतने साल पहले ये सेंटर खुल गया था, ये चीज हम पे तब गुजर गई थी, क्योंकि उस वक्त अब ये तुम्हारी कमाई में है, उसकी दया और मदद है। इसीलिए कहते हैं पहले निज कृपा, करेक्टर फॉर्मेशन, जिसको करेक्टर फॉर्मेशन में एक ही चीज नहीं है, सबसे पहले अदब। देखो लाला जी महाराज, चाचा जी महाराज साहब दो सगे भाई थे, एक का 1873 में, एक के 1875 में, पौने दो साल का फर्क था। अदब का ये आलम था कि आप अपने गुरुदेव की जगह आपको समझते थे। इखलाक, चरित्र का निर्माण इसको कहते, जिसका इखलाक ठीक नहीं है, आप फरमाया करते थे, उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो जोर किस चीज पर देते थे कि नेक कमाई हो, 100% हलाल की, खाना बनाने वाला भी नेक हो, और अगर उसी विचार का है तो और भी अच्छा है, और गलत सोबत से दूर हो और नशे वगैरह की चीजों से परहेज हो। जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी, इस विद्या का वो पात्र नहीं बन सकता। अगर मान लो किसी बच्चे को तुमने दे भी दी तो उसकी इसको वैल्यू समझ में नहीं आती। वैल्यू कब समझ में आएगी, जब उसकी आचरण का सुधार हो जाएगा। इसको कहते हैं निज कृपा, तब होती है गुरु की कृपा, और इस वक्त जो हुई प्रभु की कृपा। तो वो घर पे आदमी 20 मिनट नहीं बैठ सकता, जिस वक्त सुबह का आलम था, तो एक जिसको प्रैक्टिस नहीं होती उसको रहता है कि अब खत्म हो जाए, वो तमोगुणी हालत में, स्थूल हालत में है। जिस वक्त आत्मा की धार ऊपर होती है तो ये शरीर माइनस हो गया, उसमें थकावट नहीं आती। थकावट कब आती है, जब आत्मा की धार फिर नीचे के उस माँ के वापस आ गई, तब आती है। उससे पहले आप घंटों बैठ सकते हैं, और उसकी जीती जागती एग्जाम्पल चाचा जी महाराज साथ है। एक बढ़ते बाबा जी को ये ख्याल आया कि लोग ये कहते हैं कि परम पूज्य चाचा जी महाराज साहब 6-6 महीने नहीं सोते, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरी के हिसाब से तो उनको मेंटल हो जाना चाहिए। तो जब ख्याल ये पक्का होने लगा तो आप चले और कानपुर आ गए, और एक हफ्ते तक चाचा जी महाराज साहब के पास रहे। कह रहे थे मुश्किल से आधा पौन घंटे बाथरूम वगैरह गए होंगे, रात को बैठते थे, वो किस्से सुनाते रहते थे, हम लोग सुनते रहते थे, और ये उनका तरीका पूजा कर रहा, और दिन निकल गया। जब 7 दिन गुजर गए तो उनका हमारी छुट्टी खत्म हो रही है, अब चले, तो उनका तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उनका नहीं, तुम पागल भी नहीं हुए, उनसे जिक्र भी नहीं किया था, उनका पागल भी नहीं हुए, उनके जब तुम 7 दिन में पागल नहीं हो तो हमें भी आदत पड़ गई, हम 6 महीने में क्यों पागल हो जाएंगे। तो हंसने लगी, उनका नहीं, ये जिस्मानी थकावट कहाँ है, ये तो रूहानी खुराक है। परमात्मा की जिस पे दया है उसमें दुनिया जब आ जाती है तब थकावट आती है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से और संपर्क हैं जिनको पढ़ो तो, क्यों इनसे ये रहता है कि देखो हम में ये कमी है, हमारी कमी दूर हो जाए। हम किस मुंह से पेश होंगे, कुछ ना करो, सिर्फ बाय से बदनामी मत रहो। तो एक सत्संगी भाई में अगर कोई कमी होती है ना, आज मैं सत्संग बैठा तो दुनिया ये समझती है ये संत हो गया। कैसे हो सकता है भाई, उसकी कमी है, उसको टाइम लगेगा, दूर करने का वक्त चाहिए, धीरे धीरे वो अपने संस्कार लाए। लेकिन दुनिया वाले एक्सक्यूज नहीं करते, तो नहीं, सिर्फ परमात्मा से ये गड़ा गाते हैं कि हे गुरुदेव हम पे दया बनाए रखना, हमें दुनिया में खराब ख्यालों से, और हे मेरे परमगार तू ही मेरा सच्चा माबूद है, तू ही मेरा सच्चा मकसूद है, तू ही मेरा सच्चा मतलब है, हे मेरे परमगार हम उस रास्ते से बचाना जिस पे चल के लोग भटक गए, अपनी दया बनाए रखना, आमीन आमीन। तो देखो ये क्यों गिड़गड़ाते हैं, इसलिए गिड़गड़ाते हैं कि कोई बुराई कोई वो चीज ना जाए। हे परमात्मा हमें हरकत शैतानी, धोखे शैतानी, ख्यालात शैतानी, वशवात शैतानी से बचा। ये चारों चीजें क्या हैं, ये चीजें फॉलो करते रहोगे तो दुनिया की मुसीबतों से, ख्यालात से, पतन होने से बचा रहेगा। तो इसीलिए परम पूज बाजी महाराज साहब में जो वर्चुअस थे उनमें एक तो ये था कि बहुत ही सच्चे प्रेम की मूर्ति, अपने गुरु के एक एक लफ्ज को फॉलो करने वाले, उसमें जरा भी कोताही नहीं करते थे, और साथ में अपने गुरु से फलाहियत हासिल करने के बाद उन्होंने एक खास काम जो किया, वो जो सिलसिले के बुजुर्ग थे उनका नाम भी बहुत फैलाया। जब पहले लालज महाराज साहब की शताब्दी हुई तो कोई शख्स आपके गुरुदेव के बारे में नहीं जानता था, सबको ले गए, रायपुर ले गए, भूगांव ले गए, बड़े मौलवी साहब के यहाँ ले गए और सबसे तारुफ कराया। उनका देखो साथ साथ में इन बुजुर्गों के लिए भी हमेशा सलाम पेश किया करो, जिससे कि इनकी भी दया का पात्र बने रहो। एक मरते आप फरमा रहे थे कि उनको ख्याल आया कि देखो शिजरे में इतने बुजुर्ग पुराने हैं, पता नहीं इनमें कोई असर रहा कि नहीं रहा। तो करे जिस वक्त ख्याल आने लगा तो एक सत्संगी भाई की लड़की खो गई, तो करे हमने एक मन में शिजरा पड़ा एक बुजुर्ग के लिए कि जिनसे यह है कि दुनिया की इस तरह की, तो देखा उन्होंने वो लड़की ला के सामने बैठा दी, उनको नहीं बतलाया, उनसे कहा कि देखो इसमें तुम्हारी बच्ची ठीक है, आ जाएगी। तीसरे दिन बच्ची मिल गई, तो फिर ख्याल उठा कि ये तो रीसेंट था, हो सकता हमारा ख्याल रहा हो। फिर आपने एक बुजुर्ग को याद किया और एक साहब रिलेशन में से उनको डेथ हुए 150 साल हो गई, तो देखा कि 2-3 मिनट गुजर गए, तो ये ख्याल आया कि नहीं शिजरी में सिलसिले में कुछ कमी है। तब तक वो बुजुर्ग अपियर हुए, उनका 150 साल के मुर्दे की याद की है, 4-5 मिनट तो उसकी हड्डी उड्डी ढूंढने में लगेंगे, तब तक उसको लाके खड़ा कर दिया कि दुखे। उस दिन से उन्होंने कहा कि हमारा सबको कि जितने लोग उनसे कनेक्टेड हैं इस सिलसिले में उतनी ही जान है, इसको रोज बगैर नागा पड़ा करो। तालीम के तरीके में और आप सबसे भी यही, शताब्दी का मतलब क्या होता है कि किसी की जो उनके बताए हुए असूल हैं उनकी ऐसी नकल करो कि असल भी मात हो जाए, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और उनका किस चीज पर जोर रहता था कि 100% ऑनेस्टी। तो वो कहते थे कि नमक भर चल जाएगा, जिस पर सुनते थे, जो नजदीक होते थे, जिनसे काम लेना था, अगर उन्हें पता चल जाए इसमें ऑनेस्टी में कमी है तो दुखी होते थे। उनका कुछ अभी हमारी तालीम में कमी रह गई, 100% ऑनेस्टी, बहुत ही उसी नेक कमाई का खाना, बनाने वाला भी उतने ही 100% श्योर। और कहा करते थे कि लेडीज की सोबत से दूर रहो, ये मन है, जब तक सांस है किसी वक्त गड़बड़ा सकते हो, पर उतने ही ठीक है जितने में कभी गलती से कोई गलत काम ना हो जाए। कभी भी इस सोबत और जो लोगों की जुआ शराब इन चीजों से दूर रहना और अपने गुरुदेव को साथ रखना। हाथ पकड़ लेते आके गलत करने लोगों, उनका कि जीवन में कभी भी फेल नहीं हो गए, परमात्मा ने चाहा तो अपने इष्ट में लय हो जाओ। यही उनकी तालीम का तरीका था, यही उनकी उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, और इसी से आज प्रसाद बांटते हैं। अच्छा, सेवा और प्रेम। आप फरमाया करते थे कि परम पूज लालाजी महाराज साहब मुकम्मल हस्ती थे, उन जैसा इंसान आपने नहीं देखा। परम पूज चाचा जी महाराज साहब ने उनकी नकल ऐसी की कि असल को भी मिटा दे। तो कहा करते थे ऐसी दो हस्तियां जीवन में जिसने देख ली वो धन हो गए। तो आप सब लोग इसी उससे जाएं कि परम पूज बाबाजी महाराज साहब ने जो एक दो विद्या ब्रह्म विद्या सीखने के लिए अदब का आना जरूरी है, अखलाक का अच्छा होना जरूरी है। आप कहते थे अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं आ सकता, अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो नफासत नहीं आ सकती। निस्वार्थ सेवा, जब ये तीनों चीज मिलती हैं तब अंदर से प्रेम फूटता है, और जब तक ये प्रेम नहीं फूटेगा इसका अकुआ निकलना चाहिए, और जिस दिन ये निकल गया तो आप सबकी अपार दया हो जाती है। और सब भाइयों ने जितनों ने सब आए और सब सेवा की, सबके हम लोग बहुत आभारी हैं, खासतौर से अतिथि लोग जिन लोगों ने इसमें शिरकत की उन सबके हम लोग बहुत आभारी हैं। और जिन बच्चों ने लखनऊ से गाजियाबाद से बनारस सब ने इतनी जो सेवा की, परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा हम सब पे दया बनाए रखें और उन बुजुर्गों की कृपा हमेशा बरसती रहे। बस अब प्रसाद वितरण होगा, फिर खाना खा के जैसा जैसा जिसका प्रोग्राम हो चाहिए। अच्छा, धन्यवाद।